पृष्ठ 22, दो काव्य की परिभाषा और विभाग, दो पक्ष भाव और कला पक्ष। कवि साधारण मनुष्य की अपेक्षा कुछ अधिक भावुक और विचारशील होता है, किंतु वह अपने अनुभव को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता। वह अपने हृदय का रस दूसरों तक पहुंचाकर उनको भी अपनी तरह प्रभावित करने को उत्सुक रहता है। इस प्रकार काव्य के दो पक्ष हो जाते हैं, एक अनुदित पक्ष और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष। इसी को भाव पक्ष और कला पक्ष भी कहते हैं। पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा प्रतिपादित काव्य के चार तत्व, रागात्मक तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व, इन्हीं दो पक्षों से संबंधित है। इन तत्वों में रागात्मक तत्व की प्रधानता है, इसका संबंध अनुभूति से है। कल्पना नए नए चित्र उपस्थित कर दोनों को बल देती है। शैली तत्व का संबंध अभिव्यक्ति से है, इसमें मानसिक पक्ष रहता अवश्य है, किंतु इसमें बल कलात्मक बाह्य पक्ष पर ही है। बुद्धि तत्व अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों को औचित्य की सीमा से बाहर नहीं जाने देता। बुद्धि तत्व का निजी स्वरूप है संगति। काव्य की आत्मा। भारतीय समीक्षा क्षेत्र में काव्य की परिभाषा का प्रश्न काव्य की आत्मा के विवेचन से संबंधित है। काव्य और अर्थ को काव्य का शरीर माना जाता है। काव्य की आत्मा के संबंध में आचार्यों का मतभेद है। भरत मुनि और उनके बहुत पीछे आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना है। दंडी भामा आदि ने अलंकारों को काव्य की आत्मा माना है। हिंदी के आचार्य केशव दास जी भी इसी संप्रदाय के थे। कुंतक वा कुंतल ने वक्रोक्ति को बात को एक विदग्धता और सौंदर्य पूर्ण घुमा फिराव के साथ कहने को, जैसे रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा था कि वह रास्ता संकुचित नहीं है जिससे बाली गया, अर्थात हम तुमको भी मार डालेंगे, काव्य की आत्मा माना है। वामन ने रीति को माधुर्य ओज आदि गुणों के आधार पर रचना की शैलियों को काव्य की आत्मा बतलाया है। रीति रात्म काव्यस्य। ध्वनिकार और आनंद वर्धन आचार्य ने ध्वनि को आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। जिस काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा मुख्यता रखता है उसे ध्वनि काव्य कहते हैं। काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति। इस संप्रदायों में मुख्यतः रस और ध्वनि संप्रदाय की रही है, किंतु इन दोनों ने एक दूसरे का महत्व स्वीकार किया है। ध्वनिकारों ने पृष्ठ 23 रस ध्वनि को श्रेष्ठता दी है और रसवादियों ने रस को व्यंग्य मानकर ध्वनि का महत्व स्वीकार किया। इन संप्रदायों में रस संप्रदाय ने अनुभूति पक्ष को प्रधानता दी है, अभिव्यक्ति को भी उसने रस के पोषक और सहायक रूप में स्वीकार किया है। अलंकार वक्रोक्ति और रीति संप्रदायों ने अभिव्यक्ति की ओर अधिक ध्यान दिया है। ध्वनि संप्रदाय यूरोप के कल्पनावादियों के अधिक निकट आता है क्योंकि ध्वनि में कल्पना का अधिक प्रयोग होता है। इन संप्रदायों से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न आचार्यों ने काव्य की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। ममटाचार्य। काव्य प्रकाश के कर्ता ममटाचार्य ने उस रचना को जो दोष रहित और गुण वाली हो तथा जिसमें कहीं कहीं अलंकार न भी हो काव्य कहा है। तद्दोषा शब्द शब्दार्थ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। काव्य प्रकाश। इसकी साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने बड़ी कड़ी आलोचना की है। पहली बात यह है कि अदोषा एक अभावात्मक गुण है। बहुत से उच्च कोटि की कविताओं में भी कुछ न कुछ दोष निकल आता है, फिर क्या वे काव्य नहीं कहलाएंगे? इसके अतिरिक्त जब काव्य कभी कभी बिना अलंकारों के भी रह सकता है तो उसके उल्लेख करने की ही क्या आवश्यकता थी। परिभाषा में वही चीज आनी चाहिए जो नितांत आवश्यक है। गुण दोष तो पीछे की वस्तुएं हैं, ये अंग है और अंगी नहीं। मम्मट ने गुण और दोषों की व्याख्या रस के ही संबंध से की है और गुणों को रस से उत्कर्ष के और दोषों को अपकर्ष के कारण कहा है। इस प्रकार रस को ही प्रधानता न देते हुए प्रधानता मिल जाती है। विश्वनाथ। इसलिए विश्वनाथ ने रस को आत्मा मानते हुए रसयुक्त वाक्य को काव्य कहा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साहित्य दर्पण। वाक्य के वाक्य में अभिव्यक्ति का पक्ष आ गया और रस में अनुभूति का। इस परिभाषा के विरुद्ध केवल यही उत्पत्ति आपत्ति उठाई जा सकती है कि रस शब्द ऐसा है कि जिसकी व्याख्या अपेक्षित है, किंतु प्रायः मोटे तौर से सभी लोग जानते हैं कि रस क्या वस्तु है। गुणों के संबंध में भी तो यही आपत्ति उठाई जा सकती है। गुणों की व्याख्या में भी तो अंत में रस का आश्रय लेना पड़ता है। पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधरकार पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा भी इससे मिलती जुलती है। उन्होंने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य मानकर इस परिभाषा को अधिक व्यापक बना दिया है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य रस गंगाधर काव्यमाला सीरीज पृष्ठ 4। इसमें रस और अलंकार दोनों के ही चमत्कार आ जाते हैं, किंतु रमणीयता में हृदय के आनंद की ओर अधिक संकेत है। पृष्ठ 24। पाश्चात्य आचार्य पाश्चात्य आचार्यों ने जो काव्य की परिभाषा दी है वह काव्य के 4 तत्वों भाव तत्व कल्पना तत्व बुद्धि तत्व और शैल तत्व पर ही आश्रित है। किसी ने एक तत्व को प्रधानता दी है तो किसी ने दूसरे को और किन्हीं किन्हीं ने समन्वय बुद्धि से काम लिया है। शेक्सपियर ने कल्पना को प्रधानता दी है। वर्ड्सवर्थ ने भाव को प्रधानता देते हुए कहा है कि काव्य शांति के समय में स्मरण किए हुए प्रबल मनोवेगों का स्वच्छंद प्रवाह है। कॉलरिज ने अभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए लिखा है कि कविता उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान है। मैथ्यू अर्नॉल ने कविता के विषय को महत्ता देते हुए कहा है कि कविता जीवन की आलोचना है। डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा समन्वयात्मक है। उनका कथन है कविता सत्य और प्रसन्नता के सम्मिश्रण की कला है जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है। आचार्य शुक्ल जी आचार्य शुक्ल सत्य की अवहेलना न करते हुए रागात्मक तत्व को मुख्यता देते हैं। उनका मत इस प्रकार है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय के इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ 141। समन्वय और सार तत्व कविता के लिए सभी तत्व आवश्यक हैं। उसके लिए अनुभूति और अभिव्यक्ति का प्राय समान महत्व है, फिर भी अभिव्यक्ति का महत्व अनुभूति पर निर्भर रहता है। अनुभूति के बिना कविता निस्सार और अभिव्यक्ति के बिना वह आकर्षण हीन हो जाती है। अनुभूति का आधार अंतर और बाह्य जगत है। कविता श्रेय को प्रेय रूप देती है। वह केवल स्वांत सुखाए ही नहीं होती वरन उसमें पाठक और आलोचक भी अपेक्षित रहते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कविता की परिभाषा नीचे के शब्दों में इस प्रकार दी जा सकती है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। काव्य के विभिन्न रूप काव्य के विभिन्न रूपों को जानने के लिए काव्य के विभाजन की पाश्चात्य और भारतीय परंपरा जान लेना आवश्यक है। पाश्चात्य परंपरा काव्य के अनेक प्रकार के भेद किए गए हैं। इस भेद और विभाजन के कई आधार हैं। यूरोप के समीक्षकों ने व्यक्ति और संसार को पृथक करके काव्य के दो भेद किए हैं, एक विषयगत जिसमें कवि को प्रधानता मिलती है और दूसरा विषयगत जिसमें कवि के अतिरिक्त शेष सृष्टि को मुख्यता दी जाती है। पहले प्रकार के काव्य को लैरिक कहते हैं। पृष्ठ 25। यूनानी बाजा लाइर से संबंध रखने के कारण इसका शाब्दिक अर्थ तो वैदिक होता है, किंतु इसे प्रायः प्रगीत या भाव प्रधान काव्य कहते हैं। इसमें गीत तत्व की प्रधानता रहती है। दूसरे प्रकार के काव्य को अनुकृत या प्रकथनात्मक कहा गया है। महाकाव्य और खंड काव्य इसके उप विभाग है, किंतु पाश्चात्य देशों ने प्रायः महाकाव्य ही इसी प्रकार के काव्य का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ खंड काव्य जैसा कोई विशेष उप विभाग नहीं है। ये विभाग कविता पद्य के ही हैं। गद्य का भी ऐसा विभाजन किया जा सकता है। गद्य काव्य भाव प्रधान काव्य का स्थान लेगा और उपन्यास महाकाव्य का तथा कहानी खंड काव्य का प्रतिनिधित्व करेगी। गद्य में निबंध जीवनी आदि अनेक ऐसे रूप हैं जिनको इस विभाग में अच्छी तरह बांध नहीं सकते। गद्य काव्य के क्षेत्र से बाहर नहीं है। गद्य का उल्टा पद्य है जिसको अंग्रेजी में वर्स कहते हैं। यद्यपि आप बीति और जग बीति के आधार पर विषय प्रधान और विषय प्रधान कविता के ऐसे दो विभाग करने को हम मनोविज्ञानिक कह सकते हैं। मनुष्यों में भी कुछ लोग अंतर्मुखी प्रवृत्ति के और कुछ लोग बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, तथापि यह विभाजन सर्वथा निर्दोष नहीं। ये तो अनुकृत काव्य भी हो सकता है जैसे रामायण, किंतु मुख्यतया वैयक्तिक भावना की है। इस विभाजन के बीच की रेखा निर्धारित करना बड़ा कठिन है। कोई अनुकृत काव्य ऐसा नहीं जिसमें वैयक्तिक भावनाओं को प्रधानता न मिली हो। नायक के प्रति कवि के हृदय का उल्लास जो काव्य की सफलता का प्रमुख कारण होता है, उसे वैयक्तिक और भाव प्रधान बना देता है। भाव की प्रधानता तो काव्य की जान है। गीत काव्य भी प्रायः ऐसा नहीं जिसका बाह्य संसार से संबंध न हो और जिसमें प्रकथन का थोड़ा बहुत अंश न हो, क्योंकि कवि के निजी भावों को जागृत करने के लिए बाह्य संसार की घटनाएं अपेक्षित रहती है। इस संबंध में हम यह कह सकते हैं कि यह विभाजन प्रगीत या प्रकथनात्मक तत्वों की प्रधानता पर निर्भर है। नाटक को प्रायः बीच का स्थान दिया जाता है। वह विषय प्रधान तो होता है, किंतु उसमें महाकाव्य का सा कवि की ओर से प्रकथन नहीं होता। इसमें पात्र स्वयं कथोपकथन तथा अभिनय किए हुए कार्यों द्वारा कथानक को अग्रसर करते हैं। पात्रों के स्वयं बोलने के कारण उनकी अपने भावों के उद्घाटन करने का अधिक अवसर रहता है। इसमें कवि प्रकट रूप से जनता के सामने नहीं आता, वरन परमात्मा की भांति वह अपनी सृष्टि में छिपा रहता है। उसके भक्त लोग उसके व्यक्त रूप में ही दर्शन कर लेते हैं। भारतीय परंपरा में नाटक को कुछ अधिक प्रधानता मिली है। जो काव्य अभिनीत होकर देखा जाए वह दृश्य काव्य है। इसमें नेत्र तथा श्रवण दोनों इंद्रियों का काम रहता है और जो कानों से सुना जाए उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। यद्यपि श्रव्य काव्य पढ़े भी जाते हैं, वाल्मीकि रामायण के लिए कहा गया है कि वह पढ़ने और गाने दोनों में मधुर है। पाठ्य गेय मधुरम प्राणय स्त्री धीर रणवितम वा पृष्ठ 26 वाल्मीकि रामायण बालकांड। तथापि छापे के अभाव में उनका प्रचार गायन द्वारा ही हुआ है हुआ करता था। उन दिनों काव्य में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक थी। लोग एकांत में बैठकर उसका उपयोग नहीं करते थे, वरन समाज में बैठकर उसका रसास्वादन करना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। दृश्य काव्य श्रव्य काव्य तो अधिकांश ने पठित समाज के ही लिए था, किंतु दृश्य काव्य में जन साधारण भी आनंद ले सकते थे, इसलिए उसे पांचवा वेद कहा है, जिसमें शूद्र अर्थात अल्प बुद्धि के लोग भी भाग ले सके। न वेद व्यवहारोयम संश्रायः शूद्र जातिषु तस्मात् सृजा परम वेदम पंचम सर्ववर्णी कम नाट्यशास्त्र। दृश्य काव्य को रूपक या नाटक भी कहते हैं। यूं नाटक को रूपक का ही एक भेद माना है और इनके भी कई उपभेद हैं। श्रव्य काव्य आकार के आधार पर श्रव्य काव्य के गद्य पद्य और मिश्र जिसका चंपू एक भेद है, तीन विभाग किए गए हैं। गद्य की अपेक्षा पद्य में संगीत और आकार संबंधी भेद में अभेद की मात्रा अधिक रहती है। पद्य में आजकल नियम और नापतोल का उतना मान नहीं रहा जितना श्रवण सुखदता का छंद लय के ढांचे मात्र हैं, वे सर्वसुलभ हैं। निराला एवं पंत जैसे कुशल कवि छंद के बिना भी लय की साधना करते हैं। यह भेद नितांत आकार का ही नहीं वरन भाव का भी है। पद में गद्य की अपेक्षा भाव का प्राधान्य रहता है। गद्य का संबंध गद धातु से है, वह बोलचाल की स्वाभाविक भाषा है। पद का संबंध पद से है, इसलिए उसमें नृत्य की सी गति रहती है, वह भाव की गति और शक्ति के साथ बहती है। श्रव्य काव्य के प्रमुख भेद बंध की दृष्टि से काव्य के दो भेद किए गए हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य में तारतम्य रहता है, मुक्तक काव्य इससे मुक्त होता है, उसका प्रत्येक छंद स्वतः पूर्ण होता है। प्रबंध के भी दो भेद किए गए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य के आकार की विशालता के साथ भावों की उदात्तता और विशालता रहती है, उसमें जीवन की अनेक रूपता और शाखा बाहुल्य के साथ जातीय जीवन की झलक रहती है। वाल्मीकि रामायण, रघुवंश, कामायनी आदि इसके उदाहरण है। खंड काव्य में एक ही घटना को मुख्यता दी जाकर उसमें जीवन के किसी एक पहलू की झांकी सी मिल जाती है। कालिदास का मेघदूत गुप्त जी के अनक और जयद्रथ वध, राम नरेश त्रिपाठी जी के स्वप्न और मिलन आदि इसी कोटि के हैं। स्फुट कविताएं मुक्तक में आती हैं। मुक्तकों में कुछ तो पाठ्य होती हैं और कुछ विशेष रूप से गेय। गेय को ही प्रगीत काव्य कहते हैं। बिहारी के दोहे निराला जी की तुम और मैं शीर्षक कविता पाठ्य कही जाएंगी। सूर के पद महादेवी पंत प्रसाद निराला के गीत प्रगीत काव्य कहे जाएंगे। यद्यपि प्रबंध और मुक्तक का विभाग प्रधानतया पद का है, तथापि गद्य में भी पृष्ठ 27 यह विभाग लागू हो सकते हैं। उपन्यास महाकाव्य का स्थानापन्न होकर और कहानी खंड काव्य के रूप में गद्य के प्रबंध काव्य कहे जा सकते हैं। गद्य काव्य तो मुक्तक है ही, पत्र भी मुक्तक की कोटि में आएंगे। उनकी निबंध और जीवनी की बीच की सी स्थिति है। समस्त संग्रह की दृष्टि से एक एक निबंध मुक्तक कहा जा सकता है, किंतु निबंध के भीतर एक बंध रहता है। यद्यपि उसमें निजीपन और स्वच्छंदता भी रहती है, वैयक्तिक तत्व की दृष्टि से गद्य के विभागों को हम इस प्रकार श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। उपन्यास कहानी काव्य के इस रूप में उपन्यास की अपेक्षा काव्यत्व और निजी दृष्टिकोण अधिक रहता है। जीवनी यह इतिहास और उपन्यास के बीच की चीज है। इसका नायक वास्तविक होने के कारण अधिक व्यक्तिपूर्ण होने के कारण अधिक व्यक्तित्व पूर्ण होता है। निबंध इसमें विषय की वस्तुगतता के साथ वर्णन की वैयक्तिकता रहती है। पत्र इनमें दृष्टिकोण नितांत निजी होता है। ये व्यक्ति के होते हैं और व्यक्ति के लिए ही लिखे जाते हैं, इनको पढ़े चाहे कोई। गद्य काव्य इसमें विषय की अपेक्षा भावना का आधिक्य रहता है। गद्य काव्य तो ये सभी रूप हैं, किंतु गद्य काव्य के नाम की विधा विशेष रूप से गद्य काव्य है। यहाँ पर दी सारणी अर्थात चार्ट से उपयुक्त विभाजन स्पष्ट हो जाएगा। काव्य के दो भाग किए गए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक, नाटकादि दश रूपक और श्रव्य काव्य के अंतर्गत है पद्य, गद्य, मिश्र। पद्य के अंतर्गत उसे दो भाग में है बांटा गया है, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध को दो भाग में बांटा गया है, महाकाव्य और खंड काव्य, और मुक्तक काव्य को दो भागों में बांटा गया है, पाठ्य और प्रगीत अर्थात गीति काव्य। पाठ्य यानी नीति और श्रृंगार आदि पदक परक दोहे। गद्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, जीवनी, निबंध, पत्र, गद्य काव्य आदि। मिश्र के अंतर्गत चंपू। समाप्त।